नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वन विभाग आगामी वनाग्नि सत्र से पहले प्रदेश में 7 नई पिरूल ब्रिकेट्स यूनिट तैयार करेगा। नगर निकाय चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन, प्रत्याशियों को कल आवंटित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। चमोली जिले में मशरूम की खेती से काश्तकार हो रहे सशक्त, किसानों को दी जा रही 80% सब्सिडी। और देहरादून में जल्द ही 250 नए CNG ऑटो का संचालन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। आगामी वनाग्नि सत्र से पहले वन विभाग प्रदेश में 7 नई पिरूल ब्रिकेट्स यूनिट तैयार करेगा। इससे पिरूल एकत्रीकरण के जरिए वनाग्नि रोकथाम में मदद मिलेगी। प्रदेश में वनाग्नि का मुख्य कारण जंगलों में चीड़ वन की अधिकता है। विभाग चीड़ पिरूल को एकत्रित करते हुए इसका प्रयोग पैलेट्स ब्रिकेट्स बनाने में कर रहा है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की मदद ली जा रही है। वर्तमान में विभाग इन समूहों को प्रति कुंतल 3 रुपए की दर से चीड़ एकत्रित करने का भुगतान कर रहा है। अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा के अनुसार वर्तमान में चल रही ब्रिकेट्स यूनिट की संख्या बढ़ाकर 12 किए जाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अल्मोड़ा, चंपावत, गढ़वाल और नरेंद्र नगर वन प्रभाग में 7 नई यूनिट स्थापित हो जाएंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन भी हो सकेगा। वनाग्नि रोकथाम के लिए विभागों को समय से तैयारी करने को भी कहा गया है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्रत्याशियों को कल चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 को जबकि मतगणना 25 जनवरी को होगी। सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंचने वाली आम जनता, विशेषकर दिव्यांगजनों की सुविधा के दृष्टिगत भूतल से लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। अब प्रतिदिन राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिलने वाले दिव्यांगजनों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे मुख्य सचिव से उनके कार्यालय में मुलाकात कर पाएंगे। गौरतलब है कि अब तक दिव्यांगजनों की समस्याओं को जानने के लिए मुख्य सचिव सचिवालय परिसर में स्वयं उनके पास पहुंचती थीं। प्रदेश में साल 2024 में 210 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। राज्य में एसटीएफ कार्यालय के अधीन साइबर अपराध थाना देहरादून में साइबर ठगी की सूचना दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इनमें ठगी होने पर 23,400 लोगों की शिकायत दर्ज की गई। वहीं साइबर ठगों के खाते में जमा इस रकम में से करीब 28 करोड़ रुपए की साइबर सेल ने रिकवरी की है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने बताया कि साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए संचार साथी और चक्षु पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। 1930 हेल्पलाइन नंबर पर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
जो ये साइबर ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, इसमें जो रेगुलर क्राइम है उसके सापेक्ष इसमें विगत में बढ़ोतरी देखी गई है। और इसके लिए MHA द्वारा 1930 एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। और उसमें अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है और वो तत्काल 1930 पे सूचना दे देता है तो I4C सारे बैंक्स के जो प्रतिनिधि भी बैठे रहते हैं तो रियल टाइम में वो अकाउंट फ्रॉडस्टर का फ्रीज होके जो ठगी गई रकम है उसको बरामद करने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसके अतिरिक्त जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें जो ये क्रिमिनल्स हैं नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, जिसमें कि अभी लेटेस्ट जैसे डिजिटल अरेस्ट का चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि डिजिटल अरेस्ट एज इट इज कुछ होता नहीं है। इस तरीके से अगर कोई फोन करता है, कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है तो तत्काल 1930 पे सूचना देनी चाहिए इसकी आपको।
राज्यपाल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला गुरमीत कौर ने आज राजभवन परिसर में ट्यूलिप बल्ब का रोपण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने ट्यूलिप बल्ब रोपण को प्राकृतिक सौंदर्य संवर्धन और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। गौरतलब है कि राजभवन में प्रतिवर्ष आयोजित वसंतोत्सव के दौरान ट्यूलिप पुष्पों की विविधता आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। इस वर्ष भी 13 प्रजातियों के 3,800 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं जो आगामी वसंतोत्सव तक पुष्पावस्था में रहेंगे। वहीं इस बार वसंतोत्सव में 76 प्रजातियों के पुष्प भी आम जनमानस को देखने को मिलेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चमोली जिले में मशरूम की खेती काश्तकारों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। जिला योजना के तहत आदिबद्री और खेती गांव में मशरूम टनल बनाने के साथ ही कुछ किसानों को योजना से जोड़ा गया है। किसानों द्वारा उत्पादित मशरूम की बाजार दर 150 रुपए प्रति किलो मिल रही है। मुख्य कृषि अधिकारी JP तिवारी ने बताया कि कर्णप्रयाग से लेकर भराणीसेंट तक गांव को मशरूम बेल्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस बेल्ट में 16 मशरूम टनल बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मशरूम टनल की एक हट में 700 कंपोस्ट बैग रखे हैं। एक बैग में 10 किलो कंपोस्ट में 4 किलो मशरूम उत्पादन हो रहा है। साल में 3 बार मशरूम का उत्पादन होता है। मशरूम टनल बनाने से जंगली जानवरों से भी नुकसान नहीं होता है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रीप को निर्देशित किया कि काश्तकारों की ओर से उत्पादित मशरूम का उचित माध्यम से विपणन भी सुनिश्चित किया जाए। देहरादून में जल्द ही 250 नए CNG ऑटो का संचालन किया जाएगा। जिन लोगों ने इसके परमिट के लिए आवेदन किया था, संभागीय परिवहन विभाग ने उनके ऑटो खरीदने को मंजूरी दे दी है। आवेदकों को 31 मार्च तक ऑटो खरीदना होगा और इसके बाद परमिट जारी किए जाएंगे। देहरादून के RTO प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि संभाग के बाहरी क्षेत्रों में CNG ऑटो के संचालन से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
SGT ने भी हमें निर्देशित किया हुआ है कि जो ये डीजल से संचालित वाहन है, चाहे वो पुरानी बसेस हो, चाहे वो 500 के लगभग विक्रम हो या ऐसे लगभग 2500 ऑटो हो जो डीजल से चल रहे हैं, इनको परिवर्तित किया जाए CNG के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारी क्षेत्र है, RTA ने इस पर भी निर्णय लिया गया, भारी क्षेत्र है जहां पर कि कोई भी आने जाने की सुविधा प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, वहां के बेरोजगार लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाए और वो लोग CNG के माध्यम से ऑटो का संचालन कर सके। और इसके अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि संभाग के जो भी क्षेत्र है जहां पर की परिवहन की सेवाएं कम है, वहां पर हमने परमिट खोले हैं, जैसे रुड़की हुआ, हरिद्वार हुआ और ऋषिकेश।
संचार सुविधा से विहीन बागेश्वर जिले के दूरस्थ गांव में BSNL द्वारा 48 नए टावर लगाए जाने का कार्य गतिमान है। वहीं 15 पाली, कपूरी, देवल, विचराल, लाथी, भनार, मलखा, डूगरचा, पुडुकुनी, किरोली, बदियाकोट और खरक नातोली आदि 21 जगहों पर टावरों का निर्माण पूरा हो गया है। आज कलेक्ट्रेट में विधायक सुरेश गढ़िया और जिलाधिकारी आशीष भटगई ने संचार विहीन गांवों के लिए इन नए टावरों को वर्चुअली लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि नेटवर्क स्थापित होने से डिजिटल इंडिया का लाभ क्षेत्र की जनता को मिल सकेगा। वहीं जिलाधिकारी आशीष भटगई ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र के संचार विहीन गांवों में अब तक 21 टावरों का संचालन कर लोगों के लिए 4G सुविधा सुचारू कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इसके चलते ठंड में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में मौसम साफ बना रहेगा और तापमान न्यूनतम से अधिक रहेगा। उन्होंने बताया कि आगामी 5 से 7 जनवरी के बीच राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है।
तो 6 तारीख को दिख रहा है कि थोड़ा जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें 5 की रात से लेकर लेट नाइट से लेकर और 6 दिन में जो एक्टिविटी इनमें मिलेगी जो है, तो ठीक है। स्नोफॉल अगर बात करें तो 3,000-2,500 से ऊपर पे ही एरियाज पे मिलेंगे उन डिस्ट्रिक्स में भी, और छुटपुट भी बारिश भी मिलेगी। कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम वो दिख नहीं रहा कि सिग्निफिकेंट रेन दें, तो अभी तो स्थिति यही है। और उसके बाद जो अगला सिस्टम दिख रहा है वो 10-11 तारीख में दिख रहा है आते हुए, तो अभी अच्छा दिखा रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा अभी टाइम ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा चेंजेस दिखते हैं।
गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वन विभाग आगामी वनाग्नि सत्र से पहले प्रदेश में 7 नई पिरुल ब्रिकेट्स यूनिट तैयार करेगा। नगर निकाय चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन, प्रत्याशियों को कल आवंटित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। चमोली जिले में मशरूम की खेती से काश्तकार हो रहे सशक्त किसानों को दी जा रही 80% सब्सिडी। और देहरादून में जल्द ही 250 नए CNG ऑटो का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।